राम राम हरे हरे। प्रिय और श्री राधा मदन मोहन के सेवक उज्जैन इस्कान के भक्त वृंद, आप सबका प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के आठवां स्कंद, जिसमें विशेष रूप से मनवंत्रों का वर्णन है, और मनवंत्र का उद्देश्य होता है सद्धर्म की स्थापना करना। तो इस स्कंद में तीन विशेष रूप से सद्धर्मों का वर्णन है। पहले चार अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग के अंतर्गत जीवन में आपत्ति आए, विपत्ति आए, संकट आए तो भगवान का शरण लेना चाहिए। फिर आगे वाले 10 अध्यायों में समुद्र मंथन का वर्णन है, और इसमें सिद्धांत यह है कि भगवान जब कृपा करके सब उदारता से देता है तो सभी दान कर देना चाहिए। 14 रतन समुद्र से निकले, सभी का दान हुआ। और फिर बलि महाराज का चरित्र है, उसमें जीवन में अगर वचन किया जाए तो उसका पालन हर हाल में करना चाहिए, चाहे गुरु ना मना करे या भगवान भी छल करे। तो बलि के चरित्र और वामन देव का अवतार इस स्कंद का मुख्य प्रसंग है। एक अध्याय में मत्स्य अवतार के रूप में प्रियव्रत को भगवान ने वचन पालन करने के ऊपर जो उपदेश दिया है मत्स्य पुराण का, और जो प्रियव्रत आज हमारा मनु है, सातवां विवस्वत मनु है, इसका वर्णन है। तो इस वक्त हम आठवें स्कंद के नवें अध्याय में हैं, जिसमें एक अद्भुत विलक्षण भगवान विष्णु का मोहिनी मूर्ति रूप का अवतार का वर्णन है। ये समुद्र मंथन की पूर्ण आहुति का प्रसंग है, और इस भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य अमृत का वितरण करना है, अमृत देना है देवताओं को, और असुरों को अमृत नहीं मिलेगा। अब एक दो बातें आश्चर्यजनक सुन के फिर हम इन श्लोकों का पाठ करेंगे। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि देवता और दानव एक समय में एक जैसा कार्य कर रहे थे, कार्य एक जैसा, परिश्रम एक जैसा, समय एक, फिर भी जो परिणाम निकला, जो रिजल्ट आया, वो दोनों का अलग अलग। देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया और दैत्यों का केवल सांप के विष से मुंह काला हुआ। इसका एक ही अर्थ है, जो भगवान के अनुकूल सेवक होते हैं वो लाभ पाते हैं, फल पाते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं, और जो भगवान के प्रतिकूल हुए भले वो ही काम करें फिर भी निष्फल होते हैं। और दूसरा बहुत उत्तम शिक्षा इससे प्राप्त ये होती है कि परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर विष भी कोई पिए तो भी पूजनीय महादेव नीलकंठ हो जाता है, और धोखा करके, बेईमानी करके, छल कपट करके कोई अमृत पिए तो भी राहु की तरह गर्दन कटवाता है। तो जीवन में परोपकारी बनना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने कहा है कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, और छल कपट करके अमृत पीने वाले का भी सर कटता है। तो आइए हमारे को आज 16वां, 17वां और 18वां श्लोक पढ़ना है। इस श्लोक में जब अमृत का कलश धन्वंतरी लेके निकले, उनके हाथ से असुरों ने अमृत के कलश को छीन लिया और आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा। देवता तो पीछे रह गए। उस समय भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके असुरों के सामने प्रकट हुए। ये भगवान का नारी का रूप है, और असुर उससे विमोहित हो गए और कहा कि हमें झगड़ा हो रहा है, आप हमारे बीच में इसको बंटवारा करके पिलाइए। मोहिनी मूर्ति भगवान सत्यवादी है, उन्होंने पहले कह दिया आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों करते हो, मैं अकेली नारी हूँ, स्वच्छंद घूम रही हूँ, जब वन में घूम रही हूँ, किसी को नहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान झूठ तो नहीं बोल सकते, सत्यवादी है, सत्य संकल्प है। परंतु असुर इतने विमोहित थे कह के नहीं, हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो मोहिनी मूर्ति ने कहा एक काम करो, सब स्नान तो करो, ये परिश्रम से और वासुकी के विष से आपका मुंह काला हो गया है, सारा शरीर कपड़े, जाओ स्नान करके आओ, आचमन करो और पूर्व मुखी होके बैठ जाओ एक लाइन में। और मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को कहा आप भी दूसरी लाइन में बैठ जाओ पूर्व मुखी होकर। और ये कहने के बाद मोहिनी मूर्ति क्या करने जा रही है और कैसे उस वो कैसा वातावरण है जहाँ वितरण हो रहा है, उसका वर्णन इस श्लोक में है। प्राण मुखेशो पविष्टेशो सुरेशु दितिजेशु च धूपमोदिता शालायां जुष्टाया माल्य दीपकै तस्याम नरेन्द्र करो भ्रौ उषद दुकोल श्रोणी तटालस गतिमद वलाक्षी साकुजति कनक निपोर संजितेन कुंभस्तनी कलश पाणी अथा विशेष। प्राक मुखेशु उपविष्टेशु, प्राक मुखेशु उपविष्टेशु का मतलब सब पूर्व दिशा में मुख करके अपने अपने आसन पे बैठ गए। कौन बैठ गए? सुरेशु दितिशु च, सुरेशु देवता, दिति दिति जेशु और दिति के पुत्र दैत्य। देखिए एक कश्यप की दो पत्नियां हैं दिति और आदिति, आदिति के पुत्र आदित्य देवता और दिति के पुत्र दैत्य असुर। आदिति का अर्थ है सबको जोड़ के रखना और दिति का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। तो दोनों पूर्व मुखी आसन बिछा के बैठे। वो इस वहां वातावरण कैसा था? धूप धूप अमोदित शलायां, उस स्थान के ऊपर चारों ओर अगरबत्ती उगरू की खुशबू और ये सुगंध का वातावरण बना दिया, एक पूजा का माहौल बना दिया। धूप आमोदित शलायाम, तो इसका अर्थ है कि उस स्थान को अगरबत्तियों से उगरू से जैसे धूप का वातावरण ऐसा पवित्र कर दिया। और फिर लिखा है जुष्टायाम माल्य दीपिकई, और उसको जैसे हम अपने पंडाल बनाते हैं तो वहाँ अच्छी तरह से श्रृंगार किया, किससे? पुष्प मालाओं से और दीपक से, दीपक जला दिए, पुष्प मालाएं लगा दी। तो एक प्रकार का बहुत सुंदर सजाया हुआ वातावरण बना दिया। तो भगवान है जहाँ साक्षात मोहिनी मूर्ति के रूप में और जहाँ इस ब्रह्मांड के सारे देवता विराजमान हैं, तो वो स्थान तो निश्चित रूप से पूजा की सामग्री जैसा बनना चाहिए, हम बन गया। तस्याम नरेन्द्र कर भोरु सदुकोल, तस्याम तस्याम का भाव है उस सुशोभित सुंदर मंडप में जो दीपक दीपकों से मालाओं से और अगरबत्ती मालाओं से सजा हुआ और सुगंधित धूप आदि से सौरभित था। नरेंद्र हे महाराज परीक्षित, कथा सुखदेव महाराज बता रहे हैं, हे राजन करभ उरु, करभ कहते हैं हाथी को, हाथनी को करभ, और उरु कहते हैं जांग को। तो हाथी के हाथी की जो सूंड होती है, करभ हाथी की सूंड समान जांघों वाली, ये सुंदरता जब जांघों की दी जाती है किसी की, तो उसको हाथी की सूंड से दी जाती है। और नरेंद्र करभ उरोहो उषत दुकूल, ये दुकूल शब्द को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये दुकूल शब्द भगवान श्री कृष्ण के दुपट्टे को भी कहते हैं। दुकूल का मतलब जिसके दो पट्टे हों, दो पट्टों वाला, पर दो पट्टे का वाला, जैसे हमारी ओत्री होती है, धोती होती है, इसको दुकूल कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का नाम है दुकूल चोरम, गोपंगना नाम दुकूल चोरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोप अंगना नाम दुकूल चोरम। तो दुपट्टा चोराया, यहां साड़ी का सूचक है। मोहिनी मूर्ति ने बहुत सुंदर उषत दुकूल, बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। श्रोणी तटा, अब साड़ी कहां पहनी हुई थी, साड़ी पहनते हैं कमर के ऊपर, तो स्वर्णी तट। अब ये तट शब्द जब हम देखते हैं, कटी तटे, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, कटी तटे तटे कटे वेणु, वहां अपनी बांसुरी को खोंचते हैं कभी कभी। और यशोदा मैया के लिए भी कटी तटे शब्द है, वहां क्या वर्णन करने की जरूरत है सुखदेव महाराज को। बोला ये तो श्री कृष्ण का आसन है, कट ये जहाँ कटी का तट है कमर का, वहां बच्चे को गोद में उठाती है मैया, वो तो बहुत सुंदर स्थान है, वो कृष्ण का सिंहासन है, उसके ऊपर विराजते हैं माता यशोदा की कटी तट पे। तो यहाँ श्रोणी तट का मतलब है कि नितंब के ऊपर का भाग जो तट है, वहां साड़ी को पहना हुआ था। अलस्य गति ही, अलस्य गति का मतलब बहुत धीमी धीमी मधुर भाव से चल रही थी, कौन, मोहिनी मूर्ति। मद विवला अक्षी, और आंखें उसकी मद मस्त और चंचल थी, मद विवल अक्षी, चंचल आंखों वाली। ये चंचलता क्यों थी, क्योंकि बहुत सुंदर और नवयुवक नारी के रूप में भगवान ने प्रकट्य किया था, अवतार लिया था। मद विवल अक्षी सा, वो कौन, मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु। कूजति कनक निपुरा, कूजति कनक निपुरा, अपने निपुरों को जो स्वर्ण के बने हुए थे कनक के, उसकी ध्वनि के साथ कूजत का मतलब, जैसे कोकिल कूजती है, मयूर कूजता है, ऐसे मोहिनी मूर्ति के चरणों में लगा हुआ निपुर, वो बहुत सुंदर ध्वनि, ये बहुत प्रसिद्ध भजन हिंदी में परम पूज्य श्रीपाद भक्तिचारु स्वामी गाते थे, चैतन्य महाप्रभु का नाचत श्री हरि कीर्तन में, उसमें निपुर शब्द आता है, निपुर शोभे चरणन में। तो ये निपुर जो भगवान का है, आज भी आपके ठाकुर जी का श्रृंगार देखते हो तो पहले चरणों को ध्यान करके भगवान को निपुर पहनाया है कि माला का सुंदर सा एक गुच्छा पहनाया, उसका दर्शन जरूर करना चाहिए। और फिर क्या लिखा है, सिंजितेना मतलब उसका आवाज निपुरों का, कुंभ स्तनी कलश पाणी अथ आविवेश। कुंभ स्तनी, वैसे कुंभ मटके को कहते हैं, जैसे हमारा कुंभ मेले के नाम से कुंभ जिसके अंदर कलश उठाते हैं, कलश कुंभ को कलश समझना चाहिए। जैसे कलश होता है चांदी का कलश, वो आज जन्माष्टमी आ रही है आप कलश अभिषेक कराते हैं, जैसे कलश होता है उसको कुंभ कहते हैं। और स्तन वक्ष स्थल में जो स्तन थे उनके कुंभ जैसे, कुंभ स्तन ही सुंदरता का सूचक है। और कलश पाणी, हाथ में कलश धारण किया हुआ था, ये पाणी शब्द हाथ को कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है चक्र पाणी, रामचंद्र को कहते हैं सारंग पाणी, और विवाह को वैदिक भाषा में कहते हैं पाणी ग्रहण, शंकर जी को कहते हैं शूल पाणी, और यहाँ मोहिनी मूर्ति है कलश पाणी, उनके हाथ में अमृत का कलश धारण किया हुआ है। अथ इस प्रकार इस वातावरण में आविशेष प्रविष्ट हुई, तो इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, हे राजन सुर और असुर पूर्व मुखी आसनों के ऊपर विराजमान हो गए, सभा बहुत सुंदर फूलों से और दीपों से दीपमाला से सजाई गई, बहुत सुगंधित अगरबत्ती उगरू की सुगंध से वातावरण बहुत शोभायमान था। वो नारी रूप में सुंदर साड़ी में सुसर्जित अपने निपुरों की झनकार के साथ उस सभा में प्रवेश किया। उनके जो श्रोणी कटी थी, जो बड़े नितंब थे, चंचल आंखें थी, युवती थी और चंचल आंखों से मदमस्त चल रही थी, जिसके कुंभ जैसे स्तन थे और जिसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी थी, हाथों में अमृत का कलश लेके वहां पधारी। करभ कहते हैं, ये जो हमारी इसको क्या कहते हैं रिस्ट, जहां हम घड़ी बांधते हैं, यहां से लेके और छोटी उंगली तक ये जो जगह है इसको कर्भ कहते हैं डिक्शनरी में। इसका तात्पर्य नहीं है, प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, हम 18वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। ताम श्री सखिम कनक कुंडल चारु करण नाशा कपोल वदनाम पर देवताख्या संवीक्षया सममोहर उत्समित वीक्षणेन देवा असुरा विगलित स्तन पटिकांता। ताम उस मोहिनी मूर्ति के सुंदर मनोहर आगमन के ऊपर श्री सखीम कैसी है वो, ये विशेषण मोहिनी मूर्ति का है श्री सखी। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, प्राय सामान्य भाषा में श्री का अर्थ है लक्ष्मी। जैसे भगवान के लिए कहते हैं श्री वत्स चिन्ह, भगवान की छाती पे लक्ष्मी को लक्ष्मी का निशान है। सखिम का मतलब सहेली, श्री की सहेली। अब वे तो बात बहुत सच्ची है, श्री की सहेली का मतलब भगवान विष्णु है, वो तो वैसे भी लक्ष्मी का मित्र है, प्रेमी है, सब कुछ है, तो ये सत्य भी है। परंतु इसके तात्पर्य का भाव है कि श्री तो बहुत सुंदर है, परंतु भगवान अगर नारी का रूप लेते हैं तो श्री को भी लज्जित कर देते हैं। और सखिम की परिभाषा, सखा शब्द की परिभाषा है सम्यक ख्याति। एक का नाम लो तो दूसरे का नाम याद जा रहे हैं। अगर आप नारायण का नाम लो तो लक्ष्मी साथ में जुड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण। तो सखा कहते हैं जैसे अर्जुन कृष्ण, सुधामा कृष्ण, ये सखा की परिभाषा है, एक जैसी ख्याति हो दोनों की। कनक कुंडल, कानों में सोने के कुंडल थे, कनक कुंडल चारुकरण, बहुत सुंदर कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे। नासा कपोल वदनम, नासा नासिका, भगवान की जो नासिका थी ये तो तिल के फूल जैसी, कहते तिल फूल नासिका, तिल का जो फूल है वो शायद बहुत सुंदर होता है, उसको नासिका से, सुंदर नासिका से उपमा दी जाती है। कपोल, कपोल कहते हैं ये जो गाल हैं जिसके ऊपर एयरिंग घूमते हैं, कपोल। भाले चंदन, ये महाराज जब गाते थे भाले चंदन अलके शोभे कपोलन में, अलके कपोलन में गालों के ऊपर घुंघरे घुंघरालू बाल आते हैं, लगता है कि जैसे मुख कमल के ऊपर भौंरे मंडला रहे, तो कपोल। और वदना मुख वदन, वदन नारी, नारी गोपियों के वदन को, मुख को भगवान श्री कृष्ण भौरे की तरह उसके ऊपर मंडलाते थे, वदन। पर देवता आख्यां, ये किसका वर्णन कर रहे हैं जो नारी के रूप में, पर देवता आख्यां, जिसको परम पुरुष भगवान कहते हैं। पर देवता, देवताओं से परे है, ये आदि देव है, उसको आदि देव कहते हैं, इस रूप में आज प्रकट हुए हैं। संभीक्षया, जब वो उन सुंदर भगवान के मोहिनी रूप को देखा, समो मोरो, सारे के सारे देव असुर दोनों बहुत अधिक मनवर रूप से मोहित हो गए। एक रुक्मिणी हरण के समय में भागवत में कथा है, रुचिर आनन, सुंदर मुख वाली रुक्मिणी जिसके कुंद जैसे दांत की पंक्ति थी, अनार के दानों जैसी, और देवी के मंदिर से निकलते हुए उल्टे हाथ से अलकों को थोड़े परे किया, अपने बालों को हटाया, तो जरासंध और शिशुपाल की सेनक जो हाथी घोड़ों के ऊपर दोनों तरफ खड़े थे सुरक्षा के लिए, उस सुंदर चारु मुख का दर्शन करके मूर्छित होके पके हुए पेड़ की तरह हाथी घोड़े की पीठ से नीचे अपने अस्त्र शास्त्र के साथ गिर पड़े। श्री कृष्ण को परिश्रम नहीं करना पड़ा, रुक्मिणी की सुंदरता ने सबको विमोहित करके मूर्छित कर दिया। तो यहां मोहिनी मूर्ति की मधुर सुंदरता ने, जिसको समवीक्ष्य, जैसे उन्होंने ठीक तरह से पूर्ण रूप से देखा, सम्यक वीक्ष्य, समूह मोहु, सारे के सारे विमोहित हो गए, उसकी ओर आकर्षित हो गए और मदमस्त हो गए, और क्या उसके मुख में था जिसके कारण वो मदमुस्त हुए? सुमे उत्तस्मित वीक्षणेना, मुस्कुराती हुई स्मित, मुस्कुराती हुई उनकी ओर देख रही थी, उत्तस्मित वीक्षणेना, अपनी दृष्टि उनके ऊपर डाल रही थी। भगवान किसी के ऊपर दृष्टि डाले तो उसका कल्याण ही होगा ना, तो कल्याण दोनों का ही करेंगे भगवान, जो जिस गुण में है उसके अनुरूप उसका कल्याण करेंगे। भगवान से अकल्याण किसी का नहीं होता है। भगवान मार के भी तारते हैं और जिला के भी तारते हैं। देव असुरा, देव और असुर दोनों के ऊपर प्रभाव हुआ, दोनों की ओर देख रही थी, अपनी मटमा अपनी चंचल आंखों से मटक मटक कर चल रही थी और छटक छटक कर देख रही थी। विगलित स्तन पटिक अंताम, अब ये है भगवान को उनको और मोहित करके मूर्ख करने का एक एक लीला के अंदर भगवान का अभिनय, एक और सुंदर आकर्षण करने की कला। वो क्या किया? विगलित स्तन पटिक अंताम, जो साड़ी का पल्लू ऊपर का किनारा जो छाती के ऊपर के भाग में नस के नीचे था, वो ऐसे चल रही थी मटके को उठाकर हाथ में, कि साड़ी स्तन के थोड़ा सा स्तन के ऊपर जो थी थोड़ी सी नीचे आई, और ये उनको मोहित करने के लिए एक अभिनय अदा है मोहिनी मूर्ति की। अब इसका प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। उनका आकर्षित उन मोहिनी मूर्ति की आकर्षित नासिका, सुंदर कपोल और बहुत संगठित कानों में स्वर्ण कुंडल और सुंदर वदन मुख, जैसे ही वो अपने साड़ी के पल्लू को अपने वक्ष स्थल में थोड़ा सा आगे पीछे करती हुई चल रही थी, और देवताओं और असुरों ने इनके सुंदर मोहिनी मूर्ति के रूप और कटाक्ष और चंचल आंखों की नजर को, मुस्कुराते हुए मुख को देखा, वो तो पूर्ण रूप से मोहित हो गए। एक शब्द इसमें नहीं आया है अनुवाद में, वो है लक्ष्मी की सहेली, जो श्लोक में है। भगवान का ये रूप, भगवान के इस रूप को जो लक्ष्मी की सखी के समान था, जिनका सुंदर कर्ण कुंडलों से स्वर्ण कुंडलों से शोभित था, नासिका कपोल और मुख बहुत सुंदर था, जिनकी साड़ी का पल्लू स्तन के ऊपर से नीचे की तरफ ढलक रहा था, देवता और असुर उनके मुस्कुराहट से मोहित हो गए, ऐसा चक्रवर्ती पाद ने अनुवाद लिखा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान लक्ष्मी के मित्र हैं, सखा हैं, आज वो लक्ष्मी के सखी बने हैं। मानव में तो भगवान सर्व सुंदर है ही, नारायण, नारियों में लक्ष्मी को तो गौरव है, वो सबसे सुंदर है। भगवान ने सोचा मैं तो भगवान हूं, आज मैं नारियों में भी महो परम सुंदर मनमोहन कर सबको मोहित करने वाले रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने स्वर्ण कुंडल पहने और सुंदर नासिका के साथ प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ही तात्पर्य को यहां उद्धृत करते हुए लिखा है, आज भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में, परम पुरुष भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। ये नारी का बहुत सुंदर रूप है और वो तो भगवान सदा ही लक्ष्मी के पति हैं, मित्र हैं, नाथ हैं, सब कुछ हैं और लक्ष्मी उनकी नित्य पार्षद है, सेवक है, तो इसलिए लक्ष्मी की सखी कहा गया है। अब देखें बद्री नारायण कहते हैं बद्रीनाथ में, तो बद्री कौन है? लक्ष्मी है। जो बद्री का पेड़ बन के नर नारायण जब तपस्या कर रहे हैं तो उनको छाया और फल दे रही है। तो भगवान ने कहा जैसे मेरे को लक्ष्मी नारायण कहेंगे ऐसे आप मेरे को बद्री नारायण कहेंगे। तो नारायण से लक्ष्मी अलग नहीं होती, चांद से चांदनी अलग नहीं होती। आज अगर भगवान मोहिनी मूर्ति बने हैं तो भी लक्ष्मी की सखी के संज्ञा से ही वर्णन हो रहे हैं। आपने मोहिनी मूर्ति का मंदिर भारत में कहीं देखा है? एक मंदिर में हमारे सामसंग यात्रा करते हुए एक मोहिनी मूर्ति के मंदिर के दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मोहिनी मूर्ति का मंदिर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ और हरिद्वार के बीच में समतल जो एक स्थान आता है कश्मीर के नाम के साथ उसका मिलता हुआ नाम है, क्या कहते हैं कश्मीर को, कश्मीर क्या नाम है, श्रीनगर, नाम ही श्रीनगर है, श्री लक्ष्मी है, श्रीनगर श्री सुंदरता का सूचक है। और श्रीनगर में आप कभी यात्रा करने जाएं तो समय निकालना, श्रीनगर में जहां आर्मी का कैंप है, कैंटोनमेंट एरिया है, उसी कैंटोनमेंट के गेट से अंदर जाना है तो अंदर मोहिनी मूर्ति का मंदिर गंगा जी के तट पे है। और जो गंगा जी में बाढ़ आई थी वो बाढ़ एक बार इतनी ऊपर से आई थी कि मंदिर के कलश को भी ऊपर, मंदिर के ऊपर जो कलश है वो नीचे चला गया था। वहां सुंदर मोहिनी मूर्ति के भगवान विष्णु का नारी के रूप का मंदिर है। जिस दिन हम उस मंदिर में दर्शन करने गए, हमारा एक और जो साथी भक्त था वो नहीं जाया था क्योंकि उसके घर में बालक होने वाला था। हम मंदिर में खड़े थे, उसने फोन करके कहा कि बालिका का जन्म हुआ, तो हमने कहा हम मोहिनी मूर्ति के मंदिर में खड़े हैं, तो उसने उस बालकी का नाम ही रखा मोहिनी मूर्ति। तो ये प्रसंग कभी हमें भूलने वाला नहीं है। और मोहिनी मूर्ति का वो मंदिर श्रीनगर में कैसे क्यों बना है ये तो भगवान नारायण ही जाने, लेकिन ऐसा मोहिनी मूर्ति का पूजित मंदिर हमने एक का दर्शन किया। आपने कहीं और का किया हो तो सूचना देना। अब प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ये रूप भगवान ने धारण किया लक्ष्मी देवी को चुनौती दे दी कि आप सबसे सुंदरी अपने आप को मानती हो, देखो आज मैं अगर नारी का रूप धारण किया है तो आपसे ज्यादा मोहन करने वाला हूं सबको, मदमस्त करने वाला हूं सबको। लक्ष्मी तो सुंदर है ही, सुंदर क्या है, वो तो भाग्य की देवी है, वो सबकी भाग्य को भी सुंदर कर देती है। परंतु जब भगवान नारी के रूप में प्रकट होते हैं तब वो लक्ष्मी की सुंदरता से अति गुणा अधिक मनोहर हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। और क्यों ना हो, लक्ष्मी कहां से प्रकट होती है? भगवान के श्री कृष्ण के वांग वांग भाग से राधा राधिका, और राधिका के ही विस्तार से लक्ष्मी प्रकट होती है। तो जो लक्ष्मी का उद्गम है राधिका, वो तो सुंदर है ही, सहस्र लक्ष्मियों के का उद्गम है, और उसका उद्गम स्थान श्री कृष्ण क्यों ना सुंदर हो। रूप माधुरी में कृष्ण के सामने किसकी माधुरी, और वो तो किस उनसे ऊपर कोई हो नहीं सकता है, वो अश्वमूर्ध है। ऐसा नहीं है कि केवल नारी ही लक्ष्मी के रूप में सदा सुंदर होती है। भगवान अगर नारी का रूप ले, वैसे नारी का रूप नहीं भी ले, भगवान इतने सुंदर है कि परम सुंदरी लक्ष्मी उसके ऊपर आकर्षित है, और ब्रज में तो वो लक्ष्मी तपस्या कर रही है बेल वन में, कृष्ण की रास में प्रवेश ही नहीं कर पाती है भगवान की। तो भगवान अधिक आकर्षित तो है ही ना, और कृष्ण को तो ये चिंता हो गई कि ये राधा रानी मुझ में कौन सी सुंदरता देख के आकर्षित हो रही है, क्या इसको सुख मिलता है। तब तो चेतना महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा कृष्ण को, अपनी सुंदरता का अनुभव करने के लिए कि राधा रानी को क्या सुंदरता मिलती है। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान इतने अति सुंदर हैं कि अगर वो नारी का रूप धारण कर लें तो फिर कोई भी नारी लक्ष्मी पर्यंत उनकी सुंदरता का चुनौती को स्वीकार करके मुकाबला नहीं कर सकती। यह हमारा आज के श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। अब मोहिनी मूर्ति असुरों को कहेगी, देखो ये देवता लालची है, थोड़ा सा इनको पिलाने दो, सब आपको पिला दूंगी, और मूर्ख मान जाएंगे। और मोहिनी मूर्ति देवताओं को बड़े प्रेम से अमृत पिलाएगी। उस वक्त राहु देखेगा हमारे से धोखा हो रहा है, चंद्र और सूर्य के बीच में बैठेगा, अमृत भगवान उसके हाथ में देने के, अमृत का प्रभाव दिखाने के लिए। चंद्र और सूर्य उंगली उठा के कहेंगे कि इसने, ये राहु है, ये देवता नहीं है। भगवान के सुदर्शन चक्र का आह्वान मोहिनी मूर्ति करेगी, राहु का गर्दन कटेगा, गर्दन अमर हो गया क्योंकि अमृत पिया। फिर तो देव असुर संग्राम होगा। परंतु शंकर जी मोहिनी मूर्ति का रूप देखने आएंगे, तब आपको अद्भुत लीला देखने को मिलेगी। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन आर कमेंट?
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बढ़िया। हरे क्वेश्चन डिवोटीज हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
हरे कृष्णा। मोहिनी मूर्ति की सुंदरता का वर्णन, जिससे देव असुर दोनों विमोहित हुए, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि भगवान अगर नारी का रूप धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भुवन सुंदरी त्रिभुवन सुंदरी लक्ष्मी से भी अधिक मनोहर होते हैं। इससे भगवान की सुंदरता मधुरता और रसमयता का बोध होता है, जानकारी होती है। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा।
दो हाथ ऊपर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बीमा चाहे थे ना प्रभु जी?
हाँ जी,
बीमा चाहे थे ना एक बार अहमदाबाद वालों के साथ में।
नीमच हम आए थे गीता जयंती के ऊपर, और हमने पुलिस की जो वहाँ बड़े से बड़ा पुलिस का शिक्षा केंद्र है, रिजर्व पुलिस का, पुलिस को हमने कहा था कि तुम्हारे अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। साहब भगवान ने अर्जुन को गीता से रक्षा कराई, आप गीता सब ले लो, और सबने गीता ली थी।
जी 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 प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मेरी मम्मी 86 साल की, मैं और मम्मी दोनों रहते हैं, फादर 87 केज में अभी 5 साल पहले एक्सपायर हुए, तो मम्मी क्या वो 11 का व्रत तो रखती है, मैं भी रखती हूँ, फिर वो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है ना, तो वो पूर्णिमा का व्रत भी रखती हूँ, कथा भी करती है, तो मेरी दादी 80 में एक्सपायर हुई थी, तो बोलती मेरी सास भी करती थी, जब से बोले तो मैं भी करूंगी, तो आप ये बताइए सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि सत्यनारायण की कथा कौन सी है, मैं आज तक पढ़ पढ़ के थक गया, वहाँ लिखा है कि इस कथा को सुना, इसको ये फल मिला, ये कथा सुनी, ये कथा कौन सी है कहीं पता आज तक नहीं मिला मेरे को।
हाँ वो कलावती और वो ऐसे
भाई उनको ये तो फल है, कथा सुनने का फल है, कथा क्या है आज तक पता नहीं लगा, आज मैं आपको बताता हूँ, वो कथा है भागवत
जी।
तो सत्यनारायण का व्रत रखो ठीक है, एक बार खाना खाने अच्छा है स्वस्थ के लिए
जी।
माला ज्यादा जपो, ये फल के लिए, ये तो ये होगा कर्मकांड का व्रत, अगर कहेंगे हम उसको फल ये मिला इसलिए हम कथा कर रहे हैं, फल के लिए नहीं रखना चाहिए, भक्ति को वृद्धि करने के लिए रखने में कोई आपत्ति नहीं है, और ये सत्य नारायण है तो फिर झूठा नारायण कौन सा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है।
वो बोलती है कि नहीं सत्यनारायण भगवान भी ना विष्णु भगवान का रूप है, वो सोना वाला तो करती
नहीं, नारायण तो भगवान ही है ये तो सच है, लेकिन हमारे को भगवान की पूजा भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए करना इतना अच्छा नहीं माना जाता है, और व्रत करे तो कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी उम्र की माता जी है करने दीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जपने लिए के लिए उसको कह दीजिए बस।
हाँ वो तो जपती है, 16 वाला जपती है, 11 का व्रत भी जपती है।
अब वो कर सके तो करें, नहीं करें तो कोई आवश्यकता नहीं है, एकादशी करो बहुत है, एक व्रत एकादशी बहुत है, महीने में दो बार आता है वो अच्छा है
जी।
और अगर करती है तो उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है
जी जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
कृष्ण ऋषभानंद प्रभु, आपका प्रश्न है।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु,
धन्यवाद,
थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर दिस वंडरफुल क्लास। प्रभु मेरा प्रश्न है, आपने बीच में बताया था भगवान को असम उर्दो कहते हैं, असम उर्दो का मीनिंग बता सकते हैं?
मूर्द कहते हैं सर को, जो सर से सबसे ऊपर की जगह है, असमूर्ध मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, असमूर्ध। प्रभुपाद ने कई तात्पर्य में ये शब्द भगवान के लिए लिखा है, जिससे ऊपर कोई नहीं है, जिसके बराबर कोई नहीं है, मूर्ध वैसे सबसे ऊपर की जगह को मूर्ध कहते हैं, शिखर मूर्ध, उससे उसके उससे ऊपर कुछ नहीं है, असमूर्ध भगवान का एक संज्ञा है कि उसके समान नहीं, उसके बराबर नहीं।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण प्रभु जी। चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है,
बोलिए।
क्या मोहिनी मूर्ति श्रीमती राधा रानी से ज्यादा सुंदर स्वरूप था?
अगर लक्ष्मी से सुंदर कहा गया है और राधा रानी से सुंदर पहले तो ये है कि हमारे को एक मूर्त, हमारे मंदिरों में जो एक विग्रह है और दूसरे विग्रह के बीच में हम कहेंगे इससे ये अच्छा है, तो ये हमारे को कनिष्ठ भक्त की संज्ञा में ले जाएगा। अगर हम कहेंगे इससे ये अच्छा है तो हम हो जाएंगे नए शिक्षित भक्त। भगवान के सारे रूप समान हैं और श्री कृष्ण उन सब का उद्गम स्थान है, तो राधा रानी का प्रकट्य तो कृष्ण से ही हुआ है, जितनी सुंदरता राधा रानी में है वो आई कहां, श्री कृष्ण से आई। एक ऐसा एक इसको आप दूसरे दृष्टि से समझिए, हमारा इस्कान का एक जमींदार के बंगले में मंदिर था कलकत्ते में, जमींदार चेतन महाप्रभु का बड़ा अच्छा भक्त था, और प्रभुपाद जी के एक शिष्य अच्युतानंद स्वामी को कहने लगा, देखो चीनी है और दूध है, दोनों अच्छे हैं, परंतु चीनी और दूध को मिला के रसगुल्ला बनाया जाए तो रसगुल्ला तो अच्छा होता है। तो अच्युतानंद महाराज ने कहा क्या अर्थ? बोला राधा और कृष्ण दूध और चीनी है, रसगुल्ला चैतन्य महाप्रभु है, बहुत मीठा है और बहुत सुंदर है। अच्युतानंद महाराज को समझ में नहीं आया, श्रील प्रभुपाद के पास आए, कहा श्रील प्रभुपाद ऐसे हमारा जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, जिसकी हमने मंदिर जिसका किराए पे लिया है, वो ऐसे कह रहा है। प्रभुपाद ने कहा देखिए पहले दूध और चीनी था तभी तो रसगुल्ला बनाना, तो जो पहले था उसका महत्व ज्यादा है, फिर रसगुल्ला बनाए तो ठीक है ना। बोला ये तो ठीक है, परंतु फिर भी दोनों में से कौन महान है, कृष्ण और राधा में से कौन महान है पहले, इसका अर्थ तो ये हुआ। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है तो फिर राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कौन महान है? अब ये ऐसा प्रश्न है कि अगर उसके ऊपर टीका की जाए तो अपराध हो जाएगा। प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रहे, फिर अपने कमरे में ऊपर एक चित्र लगा हुआ था जिसमें श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में संवहन करके क्षमा मांग रहे थे। प्रभुपाद चमकती हुई आंख से देखा, देखो राधा रानी महान है, कृष्ण चरणों में बैठा सेवा कर रहा है। फिर प्रभुपाद ने दूसरा एक चित्र देखा जिसमें कृष्ण नंद बाबा के खड़ाऊ सर के ऊपर उठा के जा रहा था। बोला देखो नंद बाबा महान है, कृष्ण जिनके चप्पल उठा के जा रहा है। और फिर प्रभुपाद ने निर्णय दिया, भक्त से भगवान से भगवान का भक्त अधिक महान होता है क्योंकि वो भगवान को आकर्षित करता है। तो सिद्धांत ये कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में जब आए हैं और सबको भक्ति दे रहे हैं इसलिए राधा रानी के भाव में आए, हमें वो महान हमारे लिए वो है जो हमको भगवान कृष्ण के प्रेम दे, तो हम तो राधा रानी को ही प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण मंत्र में कि कृष्ण की सेवा दीजिए। तो सुंदरता आती तो श्री कृष्ण से है, परंतु सेवा जो करता है कृष्ण की सेवा में जो दूसरों को लगाता है वो सबसे सुंदर है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, इतना सुंदर आपने दोनों श्लोकों का विवरण दिया और हमको बताया किस तरह भगवान सबसे आकर्षित हैं और देवताओं और दोनों दानवों पे अपने